ओम शांति। आज हम सबके बीच कटक वालों की खास और वैसे हम सबकी दीदी कमलेश दीदी हमारे बीच में है, आपका भी हम बहुत बहुत दिल से वेलकम करेंगे। और आज दीदी हम सबके बीच सिर्फ कटक की दीदी होकर के नहीं, लेकिन हमारी दीदी जी के पास साकार बाबा के साथ के ढेर सारे अनुभव हैं। अभी यज्ञ में बहुत कम ऐसी दीदियां बची हैं जिनके पास साकार बाबा के अंग संग रह करके बाबा को अपनी नजरों से संपन्न होते हुए देखा है। मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी जी, आपने साकार बाबा को मम्मा को नजर के सामने देखा है, तो कैसे स्वस्थिति को मजबूत करके परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के बहुत सारे अनुभव आपने अपनी नजरों के सामने देखे होंगे, तो ऐसी कोई प्रैक्टिकल बातें हमें आप सुनाएं जिससे हमारी स्वस्थिति मजबूत हो जाए और परिस्थिति पर विजयी बनना हमारे लिए इजी हो जाए। दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा के आप सभी महारती कहना अच्छा होगा, महारती और पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं से ऐसे तो मैं बहुत मिलती हूँ और क्लासेस कराने जाती हूँ सब जगह अलग अलग ग्रुप से, लेकिन यहाँ पर 10-15 जगह के ग्रुप से इकट्ठा मिलने का और क्लास का सौभाग्य मिला। अपनी कीर्ति बहन ने कहा कि दीदी आप क्लास कराओ, मैं तो सोचती आपको यहाँ का ही माल खजाना मिलता रहे, हम तो देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की जो आज्ञा, सबसे पहले आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है, तो यही सोचकर मुझे खुशी है कि आप सबको एक साथ यहाँ पर कुछ सुनाने का मौका मिला। तो वास्तव में स्वस्थिति से परिस्थिति का परिवर्तन हमने देखा कि साकार बाबा ने सबसे पहले अपने को बदला, चाहे उसको कहें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या स्वस्थिति से परिस्थिति परिवर्तन। बाबा अकेला था, हम तो बहुत इकट्ठे हो गए, लेकिन साकार बाबा जब ब्रह्मा बाबा ने के प्रविष्टता के बाद अकेले ही कितनी परिस्थितियों का सामना किया, तो पहले नंबर उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, तभी तो परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। और स्थिति में एक शब्द भर गया कि मैं आत्मा हूँ, हर समय हर जगह हर वक्त हर किसी को, चाहे जसोदा मैया हो चाहे बाबा की बहू हो, सबको क्या शिक्षा देते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। आत्मा का पाठ पक्का करते करते और परमात्मा का पाठ पक्का कराया, तो तीन बातें हमेशा बाबा के अंदर स्वस्थिति की मजबूती में देखने को आया। पहला 100% बल्कि 200% निश्चय बुद्धि, ये मुझे परमात्मा मिला है, मेरे बैकबोन में पीछे सर्वशक्तिवान है, तो जिसके साथ सर्वशक्तिवान है भला उसके साथ परिस्थिति रह सकती है? कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो ऐसी पार हो जाएगी जैसे हाथी के पांव के नीचे चींटी चली जाती है। तो हमने देखा कि बेगरी लाइफ में भी बहुत परिस्थिति आई, और लेकिन बाबा सदा निश्चिंत रहते थे। दिन के 12 बजे भोजन की घंटी बजनी है, लेकिन एक घंटे डेढ़ घंटे पहले भोजन की व्यवस्था नहीं है। जब भोली दादी जाती थी तो बाबा कहते थे बच्ची निश्चिंत रहो। किसके ऊपर निश्चिंत रहो? सर्वशक्तिमान बाबा के ऊपर। सब अरेंज हो जाएगा, और घंटा भर के अंदर सब अरेंजमेंट हो जाता। कहीं ना कहीं से कोई लिफाफा आ जाता, खाना बन जाता, और टाइम पर घंटी बज जाती। कभी बाबा ने अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा। तो इस प्रकार उनकी हमेशा बाबा की बात रहती थी कि पूर्व निश्चित पर आप निश्चित रहो। 5 बातें सदा याद रखो: परम धाम, परमात्मा, पवित्रता, प्राय लोप। चार हो गई: परम धाम, पवित्रता, प्राय लोप और क्या बताया, परमात्मा और प्यारा बाबा। बाबा ने क्या कहा है? तुम्हारी चाबी क्या है? प्यारा बाबा। कोई भी बात में याद करो, बाबा याद आते ही आपकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये 5 बातों को प्राय लोप, जो लोप हो गया है वो अभी फिर से हमें मिल रहा है, और जो कुछ हुआ था वही हो रहा है। जो परिस्थिति आएगी वो जाएगी। कोई भी चीज आती है चली जाती है, चिंता नहीं करना चाहिए, और बाबा के ऊपर निश्चिंत रहना चाहिए तो हम परिस्थिति को पार कर सके। देखो लाखा भवन में आग लगी, एंटी पार्टी कितनी थी, पिकेटिंग कितना हुआ, लेकिन बाबा सदा निश्चिंत रहते थे। बच्चों को थोड़ी चिंता थी क्या आग लग गई, लेकिन बाबा ने कहा निश्चिंत रहो। फौरन बरसात हो गई और आग बुझ गई और बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये साकार बाबा की बात है। वास्तव में हमें ये देखना चाहिए कि स्वस्थिति के लिए हमें अपनी मन बुद्धि को परपक्क करना है, और मन के लिए जितना जितना हमारा मन स्थिर होगा और उतना ही हमें स्थिरता आती जाएगी। मन स्थिर होगा स्मृति से, जितना जितना हम बाबा की स्मृति करेंगे और समर्थी लाएंगे, समर्थी आएगी सर्वशक्तिवान बाप के, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। स्मृति और समर्थी को रखने से हमारी स्थिति मजबूत बनती है। मन तो चंचल है, उसका काम है घोड़ा, घोड़ा की तरह दौड़ना, लेकिन उसको पहले बाबा ने कंट्रोल करना सिखाया। साधु सन्यासी महात्मा क्या करते हैं? पहले कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों का राजा तो मन है। बाबा ने हमें पहले सिखाया कि मन को कंट्रोल करो, मन को समझाओ और मन को मेरे में लगा दो। अब मन के लिए एक शब्द होता है ना, एक होता है मां। ना शब्द आप नेगेटिव में लगाओगे तो उधर चला जाएगा, लेकिन ना को 2 शब्द के रूप से लो। अगर आगे लगा दो तो क्या हो जाता है? न मन। और ना को पीछे लगा दो तो क्या हो जाता है? मानन। तो ये दोनों बातें याद रखो कि बाबा का मैं बच्चा हूं, मुझे सदा नम्रता के साथ जिंदगी बितानी है, और मन को मनन चिंतन में लगाना है। जितना हम मनन चिंतन करेंगे जैसे देखो दूध होता है, दूध को हम जमाते हैं, फिर दही जम जाता है। दूध तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, दही थोड़े दिन चलता है, फिर मक्खन बन जाता है, उसमें से कॉस्टली चीजें निकलती जाती है मंथन करने से, मथते है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, घी हो जाता है, घी खराब नहीं होता है, कितनी अनमोल चीज हो जाती है। तो जितना जितना हमें ज्ञान की अमृत मिलता है, दूध मिलता है, उसको हमें मंथन करना होगा, और जितना मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उतना हमारा मन और बुद्धि मजबूत होगा, स्थिति मन की मजबूत होगी, कोई परिस्थिति भी डामाडोल नहीं कर सकेगी। और वैसे भी कहते हैं कि सेवा में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने जीवन में नम्रता लानी है, सबसे बड़ा गुण है नम्रता। और परिस्थिति कौन लाता है, सबसे ज्यादा लाता है क्रोध। क्रोध का एक बहुत बड़ा परिवार है, अगर वो आ गया, आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया तो परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। लेकिन कोई कुछ कह रहा है उसमें धीरज रखो, क्रोध मत करो, क्रोध नहीं घुस पावे, नहीं तो उसका इतना बड़ा परिवार है, आपको मालूम है ना क्रोध का कितना बड़ा परिवार है। क्रोध की स्त्री है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, इसके कारण क्या आती है परिस्थितियां। क्रोध का बड़ा भाई अहंकार, बाप है भय। क्रोध जब करता है कांपने लगता है, फिर भयभूत होता है। उसकी दो बेटी हैं, चुगली और निंदा, इन सब बातों के कारण क्या आती है परिस्थिति। ये सब खत्म हो जाए, उसका बेटा है बैर, दुश्मनी, किसी से दुश्मनी मत बनाओ, कोई कैसा है आपका क्या जाता है। उसका पोता है घृणा, किसी से नफरत मत करो। उसकी माँ है अपेक्षा, बदले की भावना। उसका दादा है द्वेष। अगर आपके अंदर क्रोध आ गया तो ये सारा परिवार आ जाए, और ये सारा परिवार क्या करेगा, अनेक प्रकार की परिस्थिति खड़ी कर देगा। मान लो आपको किसी ने कुछ कह दिया, कब हमारे पास परिस्थिति आती है, कोई हमारे पास गरीबी आ जाए या कोई कुछ कह दे, हमारे मतलब के विरुद्ध की बात कोई कह दे जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको क्या आएगा क्रोध। क्रोध से क्या खड़ी हो जाएगी परिस्थिति, वो भी क्रोध करेगा, वो आप दो कहेंगे वो चार कहेगा, आप चार कहेंगे वो आठ, आप आठ कहेंगे, फिर वो बारह कहेगा, और बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने क्रोध को भगाने का काम सीख लिया कि क्रोध कैसे भाग सकता है, आप सात बातें याद करो। अगर आपको सुबह से शाम तक सोमवार को क्रोध आता है तो आप उसको बोल दो, जब कोई उपवास करता है मौन रखता है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने उपवास किया है मौन रखा है मैं बोलूंगा नहीं। तो अगर सोमवार को हम ये बात रख लें कि आज मेरे सोमरस पीने का दिन है, सारा दिन सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ज्ञान अमृत का पान करूंगा, तुम आज मेरे पास मत आओ, भाग जाओ, क्योंकि मालूम तो पड़ता है ना क्रोध कहाँ आता है, पहले मन में, और मन में कैसे आता है, आंखों के द्वारा भी आता है, फिर बुद्धि में आ जाता है, तो बुद्धि में रौब आ जाता है, जो बातें मैंने बताई सब चली जाती है। और मंगल को जब आने लगे सोचो नहीं आज तुम बिल्कुल नहीं आना, मेरे मंगल मिलन का दिन है। और बुद्ध को जब आने लगे तो क्या कहो कि आज तो मेरी बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ के मेन पावर हाउस से पावर लेने का दिन है, बिल्कुल नहीं आना। और गुरुवार मेरे सत्य गुरुवार का दिन है, बाबा को भोग स्वीकार कराने का, अमृत पान कराने का। तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ हर दिन शुक्रवार, आज सुबह से शाम तक मुझे बाबा को शुक्रिया करना है। एक एक पल आप मेरी कितनी मदद करते हो बाबा, उसका शुक्रिया अदा करो तो भाग जाएगा। जब ये बातों को याद रखोगे, सोमरस, मंगल मिलन, बुद्धि का करंट लेना, योग, सत गुरुवार भोग लगाना, शुक्रवार शुक्रिया करना, शनिवार शनिचर कभी घर में नहीं घुसता है, दरवाजे के बाहर घूमता है शनिवार को, शनि देवता घर में नहीं आते, क्रोध है शनि तो तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। कौन से घर में? मेरे मन मंदिर में। मन तो मंदिर है ना, श्रेष्ठ घर है, श्रेष्ठ विचार करने का। रविवार मेरी छुट्टी का दिन है, आज मैं बाप दादा के साथ मौज मनाऊंगा, खेलूंगा, खाऊंगा, गीत गाऊंगा, रास करूंगा। 7 दिन जब आप उसको भगाते रहोगे तो ना वो आएगा ना उसका परिवार आएगा। जितनी परिस्थिति आती है, क्रोध पहले नंबर परिस्थिति पैदा करता है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या कोई मुझे तकलीफ आ गई तो क्या सोचना चाहिए, ये तो मेरा हिसाब किताब है ना। जब किसी भी व्यक्ति का 5 जगह कर्ज पड़ा है, कहीं 10,000 देना है, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000 कर्ज देना है, तो आप क्या करोगे? जितना जितना चुकतू होता जाएगा आप खुशी होंगे ना या दुखी होंगे? क्या होंगे? खुशी होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति से मेरे पास कोई परिस्थिति आ गई तो अभी क्या सोचो, मेरा इसके साथ हिसाब था, अभी चुकतू हो गया, पर ये है मेरा दोस्त, मेरा भाई। नफरत किसी से नहीं करो। सबसे बड़ी चीज संसार में क्या है? नफरत को प्यार में बदल दो। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, बाप दादा के नाते से हम भाई और बहन हैं। ना किसी की दृष्टि किसी के प्रति खराब करो, काम की क्रोध की ना नफरत करो। तो क्यों आएगा हमारे पास परिस्थिति? परिस्थिति को हम खुद लाते हैं। परिस्थिति है प्रकृति से बनी हुई पराई चीज, स्थिति है हमारी चीज। जब हमारी स्थिति हमारे हाथ में है, आपका हाथ ऊपर करे या नीचे करे, आपके हाथ में है ना, तो आप इसको या नीचे गिराओ या ऊपर उठाओ, तो आपके मन की स्थिति स्व स्थिति हमारे हाथ में। जब हम नहीं चाहेंगे तो परिस्थिति हमारा क्या कर सकती, क्या बिगाड़ सकती, आने ही देंगे नहीं, ऐसा काम ही नहीं करेंगे। सभी प्रकार के जैसे भी लोग हैं, जितने संस्कार वाले हैं, सबके साथ आप चल सकते हो। अगर आप अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, कितने भी कड़े संस्कार वाला, कोई आपको डगमग नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है। लेकिन आप कमजोर होंगे तो क्या हुआ, कई बातें कमजोर करती। आप बीती का चिंतन करो तो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। लेकिन बीती को भुला दो तो क्या हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। बीती को भुला दोगे तो निर्मल हो जाओगे, और बीती को याद करोगे कमजोर हो जाएंगे। एक बहन आई, मेरे पास सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनल था उसका बड़ा, लेकिन इतनी दुखी कि मैं सुसाइड कर लूं। परिस्थिति ऐसी है कि सास की बात को वो बीती को नहीं भुला सकती, वो याद कर करके डिप्रेशन, वो ही इम्प्रेशन और वो ही बातें याद रखती है। मैंने उसको समझाया, 7 दिन आप यहां पर आइए, फिर आप देखिए। और बीती तो भूत होता है, उसको याद करेंगे तो भी परिस्थिति आ जाएगी, कोई ने कुछ कह दिया तो भी परिस्थिति आ जाएगी। कितनी आप देखिए जड़ चीज है, उनके ऊपर कितनी बातें आती है। पेड़ के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, पर वो क्या देता है दूसरे को? फल देता है, क्योंकि उसकी अपनी विशेषता है। तो आपको भी कोई कुछ कहता है, अपनी स्थिति डगमग मत करो, उसको आप कुछ ना कुछ दो। हमारे काम है देने का, लेने का नहीं। नदी है, सबको क्या देती? गंदगी लेती है, साफ करती है। कोई भी चीज जल आप देखो, सब हमें देती है। इसी तरह से हमारी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अब एक पत्थर पड़ा है रास्ते में, आप कहेंगे बड़ी परिस्थिति आ गई, कैसे इसको पार करूं? वो पत्थर को छलांग सकते नहीं है, इतना बड़ा है, तो आप क्या करोगे? साइड होकर के अपने लाइफ की गाड़ी को निकाल लेंगे, या उसको तोड़ोगे? तोड़ेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, या उससे टकराएंगे तो अपना सिर फूटेगा। इससे क्या करो? साइड होके निकल जाओ। गई परिस्थिति किससे? अपनी समझदारी से, स्थिति से। इसलिए कहते हैं कोई पैसा कमाता है तो पैसे से बुद्धि नहीं आती है, लेकिन बुद्धि से पैसा हासिल कर सकते हैं। तो स्वस्थिति भी किसी की नकल करके ठीक नहीं होगी, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से हम स्वस्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें 3 बातें सिखाई। एक, सत्यता में पक्के रहो, कभी भी झूठ मत बोलो, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? सत्य का सागर आपका साथी है, कितना ऊंचा बाप मिला है, सृष्टि का मालिक, विश्व का रचयिता। थोड़ा सा याद करो, हमें कौन मिला है, तो भी आपको शक्ति आ जाएगी और हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। कौन मिला है सोचने से? जब इस प्रकार हम अपने विचार रखेंगे तो हम झूठ क्यों बोले? सच्चे बाप के बच्चे है ना। फिर एक पवित्रता, चारों सब्जेक्ट का हमारा आधार क्या है? पवित्रता। देखो उड़ीसा में कोई नहीं था, मैं अकेली गई, जबकि निर्मल शांता दीदी ने कहा कि तुम जाओ। मैंने कहा दीदी कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, मैं भाषा जानती नहीं, मैं अकेली क्या करूंगी? वहां की जाति, भाषा, कल्चर सब अलग है, मैं कैसे सेवा करूंगी? दीदी ने क्या कहा कि सूरज अकेला होता है, सारे विश्व को रोशनी देता है। एक दीपक जगा हुआ हजारों बुझे हुए दीपक को जगा सकता है। तो एक आप अपनी स्थिति को अच्छे बना के रखोगे तो आप हजारों आत्माओं को निकाल सकते हैं। कितनी परिस्थिति आई, किसी ने कहा, गाली दी कि आप अपना बोरी बिस्तर ले जाओ या नहीं चलेगा आपका आश्रम। दादी को फोन किया, दादी ने कहा बिल्कुल डरो नहीं, तुम जिस काम के लिए गई हो स्थापना के लिए, बाबा आपके द्वारा कराएगा, भाग जाएगी परिस्थिति। वही व्यक्ति जो गाली देता 15 दिन पीछे आके पैरों में गिर जाता। अगर हम डर जाए, भय कर जाए, तो कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते, निकल के भाग जाते। और एक से आज हजारों बन गए, 60-70 हजार स्टूडेंट होंगे। कैसे हो गए? एक से दो, दो से चार, 10 बढ़ते जाते हैं। अगर एक व्यक्ति भी सोच ले कि मैं स्वस्थिति को ठीक रखूंगा, और कोई भी परिस्थिति में मैं घबराऊंगा नहीं। 3 टैबलेट आप रोज खाओ, अमृत वेले। कौन सी? पीस, शांति, सारा दिन शांति में। 1 टैबलेट सारा दिन भी काम करती है, और कई बार 2 बार खाना पड़ता है। भले ही 2 बार खाओ, गऊ धूल के टाइम अमृत ले ले। और पेशेंस, पीस, पेशेंस और लव, ये तीनों चीजें आप रोज खाते रहोगे, लेते रहोगे, तो क्या बचेगा आपका? टाइम, एनर्जी और मनी, इतनी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और कुछ भी होता रहे, आप चिंता मत करिए किसी भी बात में। तो बाबा ने हमें 3 बातें पहले मजबूत होने के लिए बताई। पहली है सत्यता, दूसरी है पवित्रता। चाहे धरती आकाश भी फट जाए, पर मेरा धर्म नहीं टूटे। पवित्रता की शक्ति इतनी बड़ी है कि आप बड़े बड़े मिनिस्टर, गवर्नर सबको हाथ में कर सकते, तो स्थिति हाथ में क्यों नहीं रहेगी? आपके अपने ऊपर है। हमने तो अनुभव किए ना, सब बातों का। उड़ीसा में रह गए आज 45 साल हो गए, कितना अनुभव कर रहे हैं। और ये हमारे चारों सब्जेक्ट का आधार है, पवित्रता। अगर वो शक्ति आपके पास है 100%, खाली कर्म में नहीं, मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति और कृति, सबके अंदर 100% प्योरिटी। जितनी आपकी प्योरिटी होगी, उतनी आपके पास ताकत आएगी, स्वस्त्री के स्थिति के द्वारा परिस्थिति को भगाने की और उड़ा देने की। कोई भी बात आए, एक दिन तो हम सेंटर पर रहते थे, 1500 रुपए में सेंटर चलता था, और कितने मजे में चलते थे। आज लाखों भी आप आते हैं, चलाने वाला कौन है? बाबा। हर हाल में चलाएगा। हमारा बैकबोन कौन है, ये आप याद रखो। कौन है? शिव बाबा। बैकबोन शिव बाबा है, पर बाबा से बातें करना चाहिए। 3 बात आपने सुनी, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। 4 बात, 1 निर्भयता और 1 है श्रीमत। श्रीमत में क्या आता है? सुबह से लेकर रात्रि तक आप अपने को चेक करो। मैं श्रीमत के अंदर चलता हूँ, खाने खाते टाइम बाबा को याद करता हूँ, अमृत पीते उठता हूँ, मुरली सुनता हूँ, मुरली बड़ी अच्छी तरह गहराई में जाके पढ़ता हूँ। सब चेक करो सुबह से रात्रि तक। बाबा ने हमें संयम नियम श्रीमत बताया। आज मम्मा इतना आगे क्यों गई? बाबा ने मम्मा को आगे किया, फिर भी आगे नंबर 1 में तो बाबा रहा। क्यों रहा? कहते हैं जो आगे करते हैं वो आगे रहता है। आगे रहना ही था, पर मम्मा को आगे किया। और मम्मा किस बात में आगे की? श्रीमत पर 100%, पवित्रता 100%, धीरज 100%, सत्यता 100%, हुक्म चला रहा है। बाबा बैठा है, वो सब कुछ करा रहा है, हम क्यों चिंता करें? इसलिए बाबा ने मम्मा को आगे किया। तो अभी मम्मा 2nd नंबर रही ना, कृष्ण तो 1 है ना। 1 किसको मिला? जिसने आगे किया। इसलिए बाबा कहते हैं आप सबको आगे चांस करो। और परिस्थिति किस लिए आती है? मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं, और लड़ाई हो जाती है। और परिस्थिति क्या आती है? अपनी कमी के कारण परिस्थिति आती है। जितना अपनी कमियों को भरते जाएंगे, परिस्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। और बाबा से जैसे दुनिया में बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोन चाहिए। लेकिन बाबा से बात करने के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए। हालांकि दुनिया में जब बाबा से, मनुष्यों से फोन पे बात करोगे, तो उसका बिल भरना पड़ेगा। लेकिन बाबा से बात करोगे मौन में तो आपको अपना दिल देना पड़ेगा। दिल एक दिल भर को दे दो और किसी को नहीं, वो सबसे बड़ा है। वहां बिल भरने की कोई बात नहीं, दिल दे दो। दिल लेने वाला एक दिल भर बाबा है। सदा कहता है कभी दिल बेकू नहीं बनो, दिल में एक दिलाराम को बिठा लो। मन हमारा जब स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी परिस्थिति से हम घबराएंगे नहीं, आएगी तो पार कर लेंगे। हमने तो विनाश की परिस्थिति भी देख ली उड़ीसा में 99 में, कितनी जबरदस्त परिस्थिति आई। 15 दिन लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, तो अभी हम मुरली रोज पढ़ते थे लांटन में। जो जहां गया वहां का वहां रह गया, जहां गया हॉस्पिटल में गया, अपने उसमें गया वकालत करने के लिए, जो जहां गया वहां का वहां रह गया। हाई कोर्ट में लौटा नहीं, ऐसा जबरदस्त तूफान आया, 2 दिन भूखे रहे। हमारे पास कोई नहीं, खाली छोटी छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन साथी नहीं, सुलोचना नहीं, कोई नहीं। सारी परिस्थितियों से हमें बाबा ने गुजरना सिखा दिया। अगर आपको कोई गाली भी दे दे तो क्या हो गया? आप कहते मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, लेकिन दुख ले लेता हूं वो भी खराब है। एक साधु बेचारा रोज पूजा करता था, एक व्यक्ति आके बच्चा 10 साल का रोज उसको गाली दे के जाना, वो बोलता ही नहीं कुछ। एक दिन उसको पत्थर मारने लगा तो दूसरे आदमी ने कहा आप कैसे हो, ये मार के भी जाता है, आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। कह रहे मैं तो ले ही नहीं रहा हूं, ले नहीं रहा हूं तो मैं कहूंगा क्या, कहने की बात ही नहीं है। मैं लू तब तो कहूं ये क्या दे रहा है, क्या फेंक रहा है, क्या कर रहा है। नहीं तो इतना शांति धैर्य और सहनशील उस व्यक्ति में था। जितने बाबा के हम गुणों को धारण करेंगे उतनी हमारी स्व स्थिति मजबूत होगी। किस लिए? परिस्थितियों को पार करने के लिए। आगे चल के तो बहुत परिस्थिति आने वाली। अब फूल होता है देखो, वो कितना भी सुंदर हो पर गुण गायन किसका होता है? उसकी खुशबू का। मनुष्य भी कितना भी सुंदर हो पर वो गायन किसका है? उसके मूल्यों का गायन, उसके गुणों का गायन। तो जब हम सर्वशक्तिवान से गुण लेते जाएंगे, मूल्य अपने जीवन में भरते जाएंगे और खूब मजबूत हो जाएंगे। अंगद को कोई हिला सकता था? तो कौन सी परिस्थिति हमें हिलाएगी बताओ? कोई कहता है हमारे घर में कोई नहीं चलता, हम अकेले चलते हैं। परिस्थिति आई, हम गिर गए। अरे कैसे गिर गए आप, संभले नहीं? आपकी अगर बुद्धि में ठीक है और नियत साफ है तो बाबा आपको संभाल लेगा, गिरने देगा नहीं। साफ दिल है, सच्चे दिल है। इसलिए कोई कहता है मेरे कर्म खराब है, कर्म को मत ठोको, किस्मत को मत ठोको, किस्मत ठोकती है। जब हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे तो किस्मत आपकी क्या हो जाएगी? दासी हो जाएगी। और नियत जितनी साफ होगी उतना बाबा हमारा साथी होगा। और जब बाबा हमारा साथी है तो मैं नहीं समझती हूं कि आप ब्राह्मण बच्चे बाबा के कोई परिस्थिति को पार नहीं कर पाए। जरूर कर सकते हैं। कई बातों से परिस्थिति आती है, कभी किस लिए आती है? जल्दबाजी में, आपने जल्दबाजी में ऑफिस में कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ कर दिया, पैसा इधर उधर किया, कोई गड़बड़, वो आपको नौकरी से निकालते। लेकिन आप सच हैं, आपने गड़बड़ नहीं की है, भले ही निकाल देगा, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। जल्दबाजी करेंगे, चिंता करेंगे, कहते हैं बरी हरी सरी कड़ी, ये सब बात समझ आती है। परिस्थितियां आती है और परिस्थिति क्या आती है। बाबा के बच्चों को क्या चाहिए? दो रोटी दो कपड़ा और प्रभु के गुण गाना। बाबा से हमारे कितने संबंध है? 9 संबंध है, मालूम है कितने संबंध है? माता पिता है, माता बन के हमें पालना देता है, गोदी में लेता है। साकार बाबा ने भी गोदी में लिया, पीठ ठोका, शाबाशी दी, बहुत प्यार किया, नष्ट मुआ बना दिया और बाप बन के वर्षा देता है 21 जन्मों का। सतगुरु बन के गाइडेंस देता है, आप रोज रोज उससे गाइड ले सकते हो, तो आपको परिस्थिति कहां से रहेगी? जो भगवान के साथ ठीक नहीं चलते उनके पास परिस्थिति आती है। और टीचर के रूप से शिक्षक भी है, पढ़ाता भी है, सब कुछ सिखाता भी है। आपको पहले ही टचिंग हो जाएगी, ये चीज गलत है ये सही है, ये करो ये नहीं करो। कोई कहता है आप अच्छा कर रहे हो, छोड़ो ये गलत है, नहीं, किसी के अवगुण के कारण अपना गुण कभी मत छोड़ो। सर्जन है वो, साजन है, अनकंडीशनल साजन है, सब रीति से आपको प्यार करता है, सर्जन है, सर्जरी करता है आपकी। सबसे पहले किसकी सर्जरी करता है? आंखों की सर्जरी करता है। आंखों की सर्जरी कैसे की? पहले हम क्या देखते थे? देह देखते थे, अभी क्या कर दिया उसने? सबको आत्मा देखो। ये सब क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई। तुम्हारी सर्जरी हो गई आंखों की, फिर उसने क्या सर्जरी की? कि जो हम पहले क्या करते, दुनिया के आकर्षणों को देखते थे, अभी क्या कहता है बाबा? क्या सर्जरी कर दी? जो कुछ आप इन आंखों से देख रहे हो वो रहने का नहीं है, देखते हुए भी मत देखो। किसको देखो? एक अपनी स्थिति आत्मा और एक मुझे परमात्मा शिव बाबा। ये सर्जरी कर दी दूसरी। तीसरी क्या कर दी? हमसे जो चीजें त्याग नहीं होती थी वो सब त्याग करना सिखा, खाना पीना सिनेमा ये वो सब। तो लोग क्या कहते हैं? ये बहुत त्यागी है, नीरस जीवन है, व्हाइट कपड़े पहनते, कुछ नहीं है। हम क्या कहते हैं? हमारा त्याग कुछ नहीं है, हमें तो स्वर्ग ही याद आता है, स्वर्ग की बात सही मिलने वाली है। लोगों के लिए हम त्यागी है, बदल गए इस दुनिया से, लेकिन अपने लिए हमें सब कुछ बाबा से प्राप्त हो गया, 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त हो गया। तो तीन प्रकार से हमारी आंखों की सर्जरी कर देता है। हमारी आंखें अगर बैरागी नहीं हो तो त्याग भी नहीं कर सकती, और त्यागी नहीं हो तो वर्षा नहीं पा सकती। तो जितना जितना हम ज्ञान को मनन करेंगे और मन को ना शब्द को आगे और पीछे लगाते रहेंगे तो ना हमारी कोई धारणा बाकी जो रह सकती है। सबसे बड़ी धारणा है नम्रता। जितना आपके जीवन में नम्रता आएगी उतना आपका जीवन मजबूत होगा, उसके साथ साथ सहनशीलता धैर्यता सब कुछ आ जाएगा। और जितना आप मनन करेंगे ज्ञान को अच्छी तरह से महीनता से, मक्खन निकालते घी निकालते उस तरीके से, उतना हमारी आत्मा में बल आएगा। जब हमारी स्वस्थिति बल से भर जाएगी, शक्ति से भर जाएगी, कौन सी चीज है जो हमें रास्ते में रुकावट डाल सकती है या परिस्थिति हमें पीछे लौटा सकती है, दबा सकती है झुका सकती है? नहीं। आपका निश्चय अटूट होना चाहिए सर्वशक्तिमान। आएंगी परिस्थिति, आप तैयार रहो, क्योंकि बाबा ने कह दिया प्राकृतिक परिस्थिति आएंगी, अनेक वैसी आत्माओं की, इविल आत्माओं की परिस्थिति आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, शारीरिक बीमारियां आएंगी, तो अभी घबराओ नहीं, किसी भी बात में कभी घबराओ नहीं। हमारे पास अगर शक्ति है, गुण है, ज्ञान है, प्यूरिटी है, सत्यता है, निर्भयता है, पवित्रता है, तो कोई भी बात या परिस्थिति हमें इधर उधर घुमा नहीं सकती है, दबा नहीं सकती। दुनिया में मनुष्य को क्या चाहिए, आप देखिए अपने जीवन के अंदर मनन करिए, दुनिया में मनुष्य तीन चीज चाहता है, मेरा नाम ऊंचा हो और मेरा लिबास पहनना ऊंचा हो, या अभी कितने ब्राह्मण शाइनिंग के कपड़े पहनना चाहेंगे, कोई दरकार नहीं। दुनिया में हजारों प्रकार के हजार हजार रुपया खर्च करके कपड़े और जूते पहनते हैं, बाबा के बच्चे के कपड़े 300, 400, 500 से ज्यादा नहीं होते। इतना सिंपल, लिबास ऊंचा हो, मेरा स्थान ऊंचा हो। लेकिन आप जरा ध्यान करो, सोचो मरने के बाद क्या हो जाता है, हमारा नाम बदल गया, क्या हो गया, स्वर्गीय। जब आत्मा निकल जाती है तो कोई ये भी नहीं कहता है कि नाम पड़ा है, ये नाम है, चला गया, बॉडी पड़ी है, ले जाओ, उसका नाम बदल गया, लिबास बदल गया, क्या रहा, कफन, घर क्या हुआ, शमशान, क्या मिला, आए थे उपकार करने के लिए, परोपकार करने के लिए, लेकिन लग गए कागज के टुकड़े कमाने के लिए, जब गए तो खाली हाथ गए, शमशान में तो ना कोई आपको लिबास में जेब मिलेगी, ना कोई गोदरेज मिलेगा, ना कोई रिश्वत लेने वाले फरिश्ते मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए। अगर दिन भर में हम ऐसा मनन चिंतन करते रहें, क्या लेके आए क्या जाएंगे, हमें जो बाबा कह रहा है वो ये हमें करना है, जो नहीं कह रहा है वो नहीं करना है। तो इतनी ताकत आएगी आपकी मन की स्थिति या स्व स्थिति, माने मन को पावरफुल बनाना और बुद्धि को हर रीति से कंट्रोलिंग पावर लाना, मनोबल और बुद्धि बल बढ़ाना और साहस को कभी नहीं छोड़ना। जिसके अंदर हिम्मत है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जिसके पास साहस है वो सब कुछ कर सकता है। तो आप कभी भी मत सोचना ये क्या परिस्थिति आ गई, ये क्या हो गया, वो क्या होगा। जैसी परिस्थिति आए जिस टाइम, उसको आपको बाबा बता देगा, बच्चे इसको ऐसे पार करो, आप कर लेंगे। जब आपका बाबा से, पावर हाउस से रिलेशन और कनेक्शन एकदम ठीक है, आपकी धारणा एकदम अच्छी है, तो आप क्या नहीं कर सकते, कौन सी परिस्थिति में हारेंगे। हर एक मनुष्य क्या चाहता है, हर समय जीत चाहता है, चाहता है ना, हर बात में मेरी जीत हो। लेकिन आप जब फूल वाले के पास जाते हो तो क्या कहते हो फूल वाले को, मुझे एक हार दे दो। वहां जाके हार मांगते हो, किस लिए, भगवान से कोई नहीं जीत सकता है। जब कोई भगवान के पास चला जाता है तो उससे हार मांगने जाते हो, इसका मतलब है भगवान से कोई जीत नहीं सकता है। बाकी सब वक्त मनुष्य क्या चाहता है, मुझे विजय चाहिए, विजय माला तो आपको मिल गई, लेकिन हर चीज में मैं विजय प्राप्त करूं। टाइम हो गया मालूम है, देख रही हूं, तो बोली थी ना 6:20 तक करानी, इसलिए चलो मैं आपको फिर भी मिलती रहूंगी, कोई बात नहीं है। अभी आप इतना मैंने जो बताया है अपनी स्व स्थिति को स्मृति से समर्थि से मजबूत करो और हर एक प्रकार की परिस्थिति जैसी परिस्थिति जब आए उसको आप पार कर लो। अब परिस्थितियों का गायन कितना करें, बहुत आती है चली जाती है, बुखार आता है चला जाता है, खांसी आती है जाती है तो वो भी जाता है। जब तक हमें कार्य कर रहे रहना है तब तक तो कोई ले नहीं जा सकता यहाँ से। इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं कुछ कह रही हूँ, और एक बात कह रही हूँ कि आपने यज्ञ के लिए जो कुछ दिया है बहुत अच्छा, लेकिन ये भी एक बाबा का साकार बाबा की कर्म भूमि और चरित्र भूमि है। यहाँ पर आप अपना कुछ भाग्य बनाना चाहते हो जो यज्ञ में दिया है उसके अलावा, तो आप यहाँ कर सकते हो। जब आपको यहाँ से सौगात मिलेगी, शशि दीदी सौगात देगी, तब उस समय आप उनके आगे रख सकते हो, बाबा के लिए समर्पित कर सकते हो। जितना करेंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा, और जो करेंगे सो ही पाएंगे। ये सब बातें आप जानते हो, पुराने हो, और बहुत बार बहुत कुछ समझदार है, समझते हैं, इसलिए मैं अभी आप सबसे छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद कीर्ति बहन को, मुझे मधुबन क्लास में आप सबसे मिलना इतनी अच्छी तरह पांडव भवन में पहली बार हुआ है। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी को भी हम बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि हमने तो दीदी जी को रिक्वेस्ट की लेकिन दीदी जी ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, और आज इतना प्यार से हम सबसे आप मिली हैं। इसीलिए सबकी ओर से दीदी जी को एक बार फिर हम थैंक्स करते हैं।
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा।